أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين أما بعد پیارے دوستو آپ کو ایک بار پھر پیار بھرا سلام جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے اپنے پچھلے کاریکرم میں وضو سے سمبندھت کچھ مسئلوں کے بارے میں بات چیت کی جس میں ہم نے وضو جبیرہ کے بارے میں بات چیت کی کہ اس کو کسے کہتے ہیں وضو جبیرہ کیا چیز ہے کس پرکار کیا جاتا ہے اسی پرکار ہم نے وضو کی شرطوں کے بارے میں بھی بات چیت کی ہماری بات چیت اسی پر چلتے چلتے یہاں تک پہنچی تھی کہ وضو کے پانی اور برتن کے شرطیں کیا ہونا چاہیے کیا ہیں شرطیں یہ ہم نے آپ کو بیان کیا اس کے بعد ہم اپنے آگے کی بات چیت میں وضو کے انگوں کی شرطوں کے بارے میں بات چیت کریں گے یعنی کیا مطلب یعنی مطلب یہ ہوا کہ وہ شرطیں جو وضو کے انگوں کو دھوتے سمے ایک وضو کرنے والے کو دھیان رکھنا چاہیے ان کے بارے میں ہم یہاں پر بتائیں گے سب سے پہلی شرط جو وضو کے انگوں کو دھوتے سمے یا ان کا مسا کرتے سمے دھیان رکھنا جس پر آوشک ہے وہ یہ ہے کہ وضو کے انگ دھلے جاتے سمے یا مسا کرتے سمے پوتر ہوں اس کا ارتھ یہ ہوا کہ اگر وضو کا کوئی انگ دھوتے سمے یا مسا کرتے سمے اپوتر تھا تو اس کے لیے آوشک یہ ہے کہ اس کو پہلے پوتر کرے اور اس کے بعد اس کے اوپر پانی ڈال کر اس کا وضو کرے ہاں دوسری بات یہاں پر یہ آتی ہے کہ اگر کوئی انسان وضو کر رہا تھا مان لیجئے کہ وہ داہنا ہاتھ دھل رہا تھا اپنا جس سمے اس نے وضو کرنا آرمبھ کیا تھا اس سمے اس کا جو ہے پورا شریر وہ انگ شریر کے وہ انگ جن کو وضو کے لیے پوتر ہونا چاہیے وہ پوتر تھے اب اس نے وضو کرنا آرمبھ کیا ابھی داہنا ہاتھ یا بایاں ہاتھ ہی دھو رہا تھا کہ اس کا چہرہ کسی نجاست کی وجہ سے نجس ہو گیا مثلا خون نکل آیا ہے کوئی اور چیز ہو گئی نجس ہو گیا تو اس کے لیے کیا حکم ہے تو کہا یہ گیا ہے حکم یہ ہے کہ اگر کوئی انسان وضو کرتے سمے آگے نکل جائے اور پیچھے والا شریر کا کوئی انگ نجس ہو جائے تو اس کا وضو صحیح ہے اور دوبارہ اس کو پوتر کر کے وضو کرنے کی آوشیکتا نہیں ہے ہاں یہاں پر ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وضو کرنے سے پہلے مل اور موتر کے استھان کو پہلے پوتر کر لے اس کے بعد وضو کرنا آرمبھ کرے اس کے بعد یہیں پر ایک اور بات آتی ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہاتھ پر یا پیروں پر کچھ لوگ جو ہے گدائی کرواتے ہیں طرح طرح کے ٹیٹو وغیرہ بنواتے ہیں تو کیا یہ گدائی یہ ٹیٹو انسان کے وضو کرنے میں مشکل پیدا کرتے ہیں سمسیا بنتے ہیں یا نہیں بنتے ہیں تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ ٹیٹو اور وہ گدائی جو کھال کے اندر کی جاتی ہے وہ پانی پہنچنے میں رکاوٹ نہیں بنتی ہے اس لیے ان کے ساتھ وضو کیا جا سکتا ہے تو یہ وہ شرطیں تھیں جو وضو کے انگوں سے سمبندھت تھیں یعنی اگر کوئی انسان وضو کرنا چاہتا ہے اس کے انگوں کے لیے آوشیک یہ ہے کہ پوتر ہوں اور اگر نجاست لگی ہوئی ہے اپوترتا لگی ہوئی ہے تو اس کو پہلے پوتر کرے اس کے بعد وضو کو آگے بڑھائے وضو کو انجام دے اس کے بعد خود وضو سے سمبندھت کچھ شرطیں ہیں جن کو ہم کیفیت وضو کہتے ہیں شرائط کیفیت وضو اس میں جس سمے انسان وضو کر رہا ہے اس کے لیے ان شرطوں کا دھیان رکھنا ضروری ہے اس میں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان جس سمے وضو کرنا چاہتا ہے اس کے لیے آوشک یہ ہے کہ وہ ترتیب کا خیال رکھے یعنی کیا مطلب یعنی وضو کے سارے کاریوں کو کرم انوسار انجام دے کیا مطلب مطلب یہ کہ پہلے چہرے کو دھوئے پھر داہنے ہاتھ کو دھوئے پھر بائیں ہاتھ کو دھوئے پھر سر کا مسا کرے پھر پیروں کا مسا کرے ایک کے بعد ایک کرم انوسار اگر اس کرم کو توڑ دیتا ہے چہرہ دھونے سے پہلے داہنا ہاتھ دھو لیتا ہے داہنے ہاتھ سے پہلے بایاں ہاتھ دھو لیتا ہے یا سر کا مسا بعد میں کرتا ہے پیر کا مسا پہلے کر لیتا ہے تو اس کا وضو صحیح نہیں ہوگا ترتیب کا خیال رکھنا آوشک ہے और उसी में एक शर्त यह भी है कि मवालात का भी ख्याल रखे। मवालात कहते हैं किसी भी कार्य को एक समय में अंजाम देना, यानी उसके बीच में इतना ज़्यादा फासला न रखना कि लोग ये कहने लगे एक तो कार्य ही नहीं हो रहा है। इसलिए आवश्यक ये है कि इंसान जिस समय वुज़ू कर रहा है उस समय क्रम के साथ साथ उसके मवालात का भी ध्यान रखे, यानी एक अंग को धोने के बाद या एक अंग का मसा करने के बाद दूसरे अंग तक पहुंचने में इतनी देर न लगा दे कि वुज़ू की सूरत बिगड़ जाए या उसका पहले वाला अंग सूख जाए। अगर ऐसा होता है और पहले वाला अंग सूख जाता है तो उसका वुज़ू सही नहीं है, उसका वुज़ू बातिल है। उसके लिए आवश्यक ये है कि वो दोबारा वुज़ू को अंजाम दे। लेकिन यहाँ पर एक और बात आती है जो बहुत से लोग प्रश्न इस बात का भी करते हैं, ऐसा प्रश्न भी उठाते हैं कि क्या वुज़ू के बीच में चलना वुज़ू को तोड़ देता है। मसलन कोई इंसान जाता है मस्जिद में, मस्जिद में नल के पास खड़े होकर पूरा वुज़ू करता है, चेहरा धोता है, दाहिना हाथ धोता है, बायां हाथ धोता है। अब जब मसा करने का समय आया तो चलता हुआ मस्जिद के अंदर आ गया और मस्जिद के अंदर आके मसा करता है, तो क्या उसका ये कार्य उसके वुज़ू को तोड़ देने का कारण बनता है? तो कहा जाता है नहीं, कुछ कदम चलना, थोड़ा बहुत चलना वुज़ू के टूटने का या मवालात के टूट जाने का कारण नहीं बनता है। हाँ, इतना न दूर जाए कि लोग ये कहने लगे कि वुज़ू की सूरत बिगड़ गई है। अगर ये कहा जाए वुज़ू की सूरत बिगड़ गई है, ये तो टहल रहे थे साहब, तो ऐसी सूरत में उसका वुज़ू बातिल हो जाएगा। और उसके बाद एक बात और भी आती है, ये मसले हैं कि अगर कोई इंसान स्वयं वुज़ू कर सकता है, इस बात का सामर्थ्य रखता है कि स्वयं पानी ले, खुद वुज़ू कर ले, सब कर सकता हो, तो उसके लिए किसी दूसरे की सहायता लेना सही नहीं है। अब अगर कोई इंसान, कोई दूसरा इंसान आता है, उसका हाथ धुलाता है, उसका मुंह धुलाता है और उसका सर और पैर का मसा वगैरह कर देता है, तो उसका वुज़ू बातिल है, उसको किसी दूसरे की सहायता नहीं लेना है, स्वयं वुज़ू करे। हाँ, अगर कोई दूसरा आता है उसको हाथ पानी देता है, यानी वो वुज़ू नहीं करा रहा है, उसको आता है कि अगर मसलन चेहरे को धोना है उसके हाथ में पानी डाल दिया, तो क्या ये भी वुज़ू को तोड़ने का कारण बनता है? तो कहा जाता है नहीं, अगर कोई इंसान दूसरे से पानी लेकर स्वयं वुज़ू कर रहा है तो उसका वुज़ू तो सही है, लेकिन उसके लिए बेहतर ये है कि ऐसा न करे और ये कार्य मकरूह है। और अगर कोई इंसान ऐसा है किसी कारणवश वो स्वयं वुज़ू नहीं कर सकता है, मसलन उसके हाथों में शक्ति नहीं है, कोई बीमारी है जिस कारण वो स्वयं वुज़ू नहीं कर सकता है, तो उसके लिए आवश्यक ये है कि वुज़ू करने से पहले किसी दूसरे की सहायता ले, वो दूसरा इंसान आए, दूसरा व्यक्ति आए और उसको वुज़ू कराए। अब अगर दूसरा व्यक्ति आता है और कहता है कि हम इस वुज़ू कराने के संबंध, हम तुमको वुज़ू तो कराएंगे लेकिन इस वुज़ू कराने के संबंध में हम तुमसे पैसा लेंगे, तो अगर वो इंसान उस पैसा को दे सकता है, उसके पास इतना पैसा है कि उसको दे सके, तो उसको चाहिए कि उसको पैसा दे, पैसा देने के बाद उससे सहायता ले और उससे वुज़ू करवाए। तो एक यहाँ पर तो एक ये बात हुई कि इंसान दूसरे से सहायता लेकर वजू करे, लेकिन यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि वो इंसान जो दूसरे से सहायता ले रहा है, दूसरा इंसान उसको वजू करवा रहा है, जैसे कि अगर कोई इंसान उसका हाथ उठ के ऊपर तक नहीं जा सकता, चेहरे तक नहीं जा सकता है, तो दूसरा इंसान उसको वजू में चेहरा धुला रहा है, तो वो कार्य, वजू के वो कार्य जो स्वयं कर सकता हो, मसलन हाथ को धो सकता हो या मसा कर सकता हो, तो उसके लिए आवश्यक ये है जो कार्य स्वयं कर सकता है वो खुद करे, उसमें दूसरे की सहायता न ले, और जो है जो कार्य स्वयं कर सकता है उसको अंजाम देना खुद उसी के ऊपर वाजिब है। जो इंसान, जो दूसरा इंसान है, अगर किसी को मसा करा रहा है, यहाँ पर उसके लिए भी कुछ बातें का ध्यान रखना आवश्यक है। अगर कोई इंसान किसी दूसरे को वुज़ू करा रहा है तो उसके लिए आवश्यक ये है कि वुज़ू कराते समय इस बात का ध्यान रखे जब उसके मसा करने का नंबर आए सर और पैर का, तो वो उसके हाथ को सर तक पहुँचाए, खुद उसके हाथ को उसके पैरों पर मसा करवाए। अगर किसी कारणवश उसका हाथ सर के मसे तक या पैर के मसे तक नहीं पहुँच सकता है, तो ऐसी अवस्था में वो उसके हाथ में बचे हुए पानी को अपने हाथों में ले, अपने हाथों में लेने के बाद उसके सर और पैर का मसा कर दे। इसी मसले में, इसी संबंध में कुछ और मसले होते हैं कि अगर कोई इंसान, मसलन मान लीजिए ठंडक का ज़माना है और कोई इंसान बीमार है, अब उसको ये इस बात का पता है, वो जानता है कि अगर उसने वुज़ू किया तो वुज़ू करने के कारण वो बीमार हो जाएगा, या जो पहले बीमारी थी वो बीमारी बढ़ जाएगी। तो क्या वो वुज़ू कर सकता है? का नहीं, ऐसी सूरत में उसके लिए वुज़ू करना सही नहीं है, बल्कि उसको चाहिए कि वो तयम्मुम करे। और अगर इस आदेश को तोड़ते हुए वो वुज़ू कर लेता है, यानी इसको पता था बीमार हो जाएगा, या इसको डर था कि बीमार हो जाएगा, लेकिन फिर भी उसने वुज़ू कर लिया, तो अगर वुज़ू कर लिया है तो उसका वुज़ू बातिल है, उसका वुज़ू सही नहीं है। और दूसरी बात यह कि इंसान जब वुज़ू कर रहा है तो उसके लिए आवश्यक यह है वो क़ुर्बतन अल्लाह करे, अल्लाह वुज़ू करे, यानी इसलिए वुज़ू करे कि ईश्वर का आदेश है, उसने कहा है वुज़ू करना, तो हम ईश्वर के लिए वुज़ू कर रहे हैं। अगर दूसरे को दिखाने के लिए वुज़ू कर रहा है तो उसको रियाकारी कहा जाएगा और उसका वुज़ू बातिल होगा। और इसी में एक लास्ट बात जो आती है, जो अंतिम बात आती है, वो ये है कि जिस समय इंसान वुज़ू कर रहा है उस समय वो नियत करे। ये तो सभी जानते हैं नियत करना आवश्यक है, लेकिन ये आवश्यक नहीं कि वो नियत को ज़बान से जारी करे, यानी ये वो कहे कि वुज़ू करता हूँ वाजिब या मुस्तहब क़ुर्बतन अल्लाह, वुज़ू करता हूँ क़ुर्बतन अल्लाह, ना, ज़बान से जारी करना आवश्यक नहीं है। इसी प्रकार दिल में भी इस नियत को गुजारना आवश्यक नहीं है, यानी दिल में सोचे, बहुत गौर कर रहा है कि हम दिल में सोच रहे हैं कि हाँ हम वुज़ू करने जा रहे हैं क़ुर्बतन अल्लाह, ना, सिर्फ इस बात का अगर ध्यान है उसको वुज़ू करते समय कि वुज़ू करने जा रहा है, तो यही उसकी नियत के लिए काफ़ी होगा। यानी क्या मतलब? यानी ये कि अगर वो खड़ा हुआ वुज़ू कर रहा है और कोई इंसान, कोई व्यक्ति उससे पूछ ले कि आखिर तुम क्या कर रहे हो, तो वो ये कह सके कि हाँ मैं वुज़ू कर रहा हूँ, और अगर वो इस बात का जवाब दे सकता है, वो ये कहे कि हाँ वुज़ू कर रहा हूँ, इसका मतलब ये उसकी नियत की हुई है, इसका मतलब ये उसकी नियत सही है और उसका वुज़ू भी सही होगा। इसके बाद के हम प्रोग्राम में वुज़ू के वो चीज़ें जिनके लिए वुज़ू ज़रूरी है, या वो चीज़ें जिनके लिए वुज़ू आवश्यक होता है, उनके बारे में बातचीत करेंगे। तब तक के लिए हमारे अगले प्रोग्राम का इंतज़ार कीजिए सुंदर भविष्य की आशा के साथ। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।